ग्रंथ है जिसका स्वाध्याय करना है। सन 1932 में इस पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ को ज्ञानमती माता जी की माँ, जिनका नाम था मोहिनी, उनका विवाह हुआ तो उनके पिता श्रेष्ठी सुखपाल दास जी ने इन्हें दहेज में ये ग्रंथ दिया था। और ये दहेज का ग्रंथ उस घर की निधि बन गया। पहले उस माँ मोहिनी ने जीवन भर स्वाध्याय किया, और जब उनकी प्रथम कन्या के रूप में ज्ञानमती माता जी मैना के रूप में जन्मी, इन्होंने भी स्वाध्याय किया, और इस स्वाध्याय के बल पर इन्होंने वैराग्य प्राप्त कर लिया, और आज देश की सर्वोच्च साध्वी, ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध, वयोवृद्ध साध्वी के रूप में आज ये प्रसिद्ध हैं। और जरा सा इनके स्वास्थ्य को लोगों ने जाना कि ज्ञानमती माता जी अस्वस्थ हैं, तो पूरे देश ने शांति धारा, शांति विधान और शांति मंत्र के जाप भी करके अपनी भक्ति, आदर और वात्सल्य प्रेम का परिचय दिया। आज ज्ञानमती माता जी पूरी तरह से स्वस्थ होकर के आपके सामने बैठी हैं। जब लो पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी की, तब इस स्वाध्याय को शुरू करती हूँ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। इसमें 25 अध्याय हैं, इसलिए पंचविंशति का नाम रखा है। पद्मनंदी आचार्य ने रचा, इसलिए इसका नाम रखा पद्मनंदी पंचविंशति का। अब इसमें सबसे पहले अध्याय के अंदर मंगलाचरण के बाद धर्मोपदेशामृत, धर्म का उपदेश सुन करके उस अमृत से अपने जीवन की भूमि को सिंचित कर लें, ताकि वो उपजाऊ बन जाए। और धर्म के लिए कहा कि धर्मो जीव दया। सबसे पहले धर्म का मतलब है जीव दया का पालन करना। मन से भी किसी जीव की हिंसा नहीं करने का भाव करना, और तन से तो किसी को मारना ही नहीं है अपने को। आप झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाते हैं, पानी भरते हैं, सब कुछ करते हैं, उसमें जान अनजान में अगर कोई जीव मर जाते हैं, उसका दोष आपको नहीं लगेगा, क्योंकि वो आरंभी हिंसा में चला जाता है। लेकिन संकल्पी हिंसा का हर गृहस्थी को भी त्याग होना जरूरी है, कि हम संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारेंगे कि वो फलाना जीव जा रहा है, चलो उसको मार दिया। बच्चे जब जरा सा उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो आप मना कर दे, नहीं बेटा, चींटी मर जाएगी, चींटी मर जाएगी। यानी हमारे संस्कार जन्म से ही अहिंसा के, जीव दया के संस्कार हैं। उन्हीं को सबसे पहला धर्म कहा। उसके बाद में कहा कि गृहस्थों को भी व्यसनों से दूर रहना है। सात व्यसन है, उन सात व्यसनों को छोड़ना है, क्योंकि हमें सातों नरकों में नहीं जाना है। तीन लोक की रचना के अंदर आपने नीचे से ऊपर तक नरक देखे होंगे। कल एक सज्जन कहने लग गए, माता जी इनको देख करके तो बड़ा डर लगा, आपने बहुत अच्छा यहाँ बनाया। तो हमने कहा, फिर क्या डर लगा, तो आपने क्या सोचा? बोले, हमने यही सोचा है कि अब हम पाप नहीं करेंगे, जहां तक होगा कोशिश करेंगे कि हम पाप ना करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, हिंसा ना करें, तो बस इससे नरक गति में जाना छूट जाएगा। ऊपर गए तो बोले, वहां तो बड़ा अच्छा लगा, पांच मेरु हैं, मध्य लोक है, खूब सारे भगवान हैं। और उसके ऊपर गए, फिर तो कहना ही क्या, वहां तो स्वर्गों की रचना है। वहां पर जब कोई जीव जाता है ना, तो वहां एक पलंग पड़ा होता है, उसको कहते हैं उपपाद सैया। जैसे ही कोई जीव गया पुण्य बंद करके, तो उस उपपाद सैया के अंदर एकदम बैठ जाता है। और जैसे 16 साल का नवयुवक कोई उठ करके बैठा है, इस प्रकार से उसका जन्म हो जाता है। उसे 9 महीने गर्भ में नहीं रहना पड़ता, अंतर मुहूर्त के अंदर, 48 मिनट के अंदर ही जन्म ले लेता है स्वर्ग में जाके। और वहां याद आ जाता है, मैं कहाँ से आया हूं, मुझे क्या करना है। तो ऐसे तीन लोक की रचना को बनाने का कारण यही रहता है कि हर प्राणी कर्म सिद्धांत को समझे। नरक गति के द्वार हैं सात व्यसन, उनको छोड़ने के लिए कहा, और उन सातों व्यसनों में जो प्रसिद्ध हुए एक-एक के नाम भी कल आपने सुना था कि जुए में युधिष्ठिर राजा का नाम दिया और मांस खाने में राजा बक का नाम दिया। ऐसे सातों व्यसनों में सात व्यक्तियों के नाम इसलिए गिनाए कि ऐसा पाप हमें नहीं करना है। अब आगे कहते हैं आचार्य देव कि ये व्यसन क्यों खराब है। सर्वाणि व्यसनानि दुर्गति पथा स्वर्गापवर्गार्गला वज्राणि व्रत पर्वती सुविषमा संसारिणाम शत्रुवः प्रारंभे मधुरे सुपाक कटुके स्वीते सुसादी धनै कर्तव्यानमतिर्मणागपीतम् वांछद्भिरत्रात्मनः। अर्थात कह रहे हैं कि सारे के सारे व्यसन दुर्गति के पथ हैं, दुर्गति के मार्ग हैं, यानी दुर्गति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन्हें अर्गल, अर्गल माने बेड़ी कहा है, जंजीर से जैसे किसी को बांध दिया जाता है ऐसे ये जंजीर हैं दुर्गति पथ पर ले जाने के लिए। और कह रहे हैं इन व्यसनों की ओर कभी किसी को भी नहीं झुकना चाहिए। अगर अपनी बुद्धि को निर्मल रखना है, अच्छी रखना है, तो इन व्यसनों की ओर देखना भी नहीं चाहिए। क्या जरूरत है इनकी? हम अहिंसा में रहेंगे तो हिंसा को देखने की जरूरत क्या है? हम सच बोलेंगे तो झूठ बोलने की ओर जाने की जरूरत नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी लाइन पे चलते चले जाओ। अगर हम बुरे की संगति करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। कह रहे हैं कि ये व्यसन जो हैं शुरू में तो थोड़ा मधुर लगते हैं, माने हमारी किसी से दुश्मनी है उसको मार करके उसको हानि पहुंचा करके थोड़ी देर के लिए तो व्यक्ति खुश हो जाता है। चोरी करके सोचता है अरे वाह आज तो मेरे पास इतने पैसे आ गए, तो प्रारंभ में तो कुछ मीठे लगते हैं, लेकिन जब इनका फल भोगना पड़ता है तो ये बहुत अधिक कटु लगते हैं। और जब नरक में जीव जाता है तो उसके अंदर तो अब मैं ऐसे पाप कभी नहीं करूंगा, मुझे कढ़ाई में तला जा रहा है, मेरे ऊपर आरी चलाई जा रही है, मुझे गरम गरम पिलर से चिपकाया जा रहा है, हमने ऐसे पाप किए थे वहां सोचते हैं, लेकिन फिर जब मनुष्य गति में आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। और जब भूल जाते हैं इसीलिए आचार्यों को संतों को सत्संग कराते समय इनको याद दिलाना पड़ता है कि आप कहीं भूल से भी इसकी ओर तो नहीं गए। हम कभी बचपन में सोचते थे कभी बाजार जाने लगे कहीं जाने लगे तो माँ याद दिलाती थी भादों के महीने में कि बेटा देखो भूल मत जाना, रात में कुछ खा मत लेना, व्रत है नहीं खाएंगे, लेकिन माँ हितकारी होती है तो वो याद दिलाती है। ये जिनवाणी माँ है, ये हमें बार बार याद दिलाती हैं। आप कहें हम तो हमें तो पता है क्या ऐसे व्यसन करने से ये होता, अरे पता है, लेकिन पता होते हुए भी जीव जाता है करता है अवगुणों का पालन करने लगता है। देखो इंडियन करेंसी जितनी भी है चाहे नोट है चाहे सिक्का है सबके ऊपर एक सूक्ति लिखी रहती है। क्या लिखी रहती है? सत्यमेव जयति। उसका मतलब क्या है? सत्य सदा जयशील होता है। लेकिन उसी नोट को उसी करेंसी को उसी धन को कमाने के लिए झूठ बोला जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि करेंसी पर नहीं लिखा जाए, कहीं लिख दिया जाए असत्यमेव जयते? नहीं, सूक्तियां हमेशा अच्छी चीज बताती हैं। हम स्कूलों में ठहरते हैं अच्छी अच्छी सूक्तियां लिखा लिखी रहती हैं, सत्याचे हाल होत पण हार होत नाहीं। सत्यवादी बेहाल हो सकता है परेशान हो सकता है लेकिन उसकी हार कभी भी नहीं होती, सत्य की जड़ हमेशा हरी होती है। तो बब्यात्मा इसलिए बार बार इन चीजों का हमें आचार्य याद दिलाते हैं। इस पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ का पद्यानुवाद ज्ञानमती माता की सबसे छोटी बहन हमारी भी बहन त्रिशला जैन ने किया, हमने प्रेरणा दी और उसने बहुत अच्छे अच्छे भाव भरे उसके अंदर कहा जिनकी बुद्धि अति निर्मल है जो आत्मा का हित चाह रहे वे कभी न झुकते व्यसनों में जो स्वर्ग मोक्ष सुख चाह रहे, सब व्रत के नाशक परम शत्रु ये, व्यसन प्रथम तो मधुर लगे पर अंत में कटु फल मिलता है, इसलिए स्वप्न में भी न गए। एक एक शब्द का अर्थ कितनी सरलता से भर दिया आपने। समय का सदुपयोग किया, अपने ज्ञान का उपयोग करके आप सबको लिख करके दिया कि आचार्यों की वाणी भव्यात्माओं समझना है कि कभी कुछ मधुर भी लग जाए, झूठ बोलने से कोई काम बन गया तो अच्छा भी लग जाता है, लेकिन झूठ बोलने का जब फल मिलता है कभी जीभ काटी जाती है, कभी कुछ होता है तो बड़ा कटु लगता है। लेकिन ये एक बात ध्यान रखना, अगर धर्म पर कोई कभी कष्ट आ रहा है, धर्म पर किसी प्रकार का कोई हमला कर रहा है, अगर वहां किसी प्रकार की कोई असत्य वादिता करनी पड़ती, झूठ बोलना पड़ता है, तो सच में शामिल हो जाता है। इतना हमेशा ध्यान रखना। कोई स्लॉटर हाउस की ओर गाय जा रही है, कसाई पीछे से दौड़ के आया, वे आपने इधर से गाय जाते देखा है, आप समझ गए कि ये तो मारने के लिए दौड़ा है, नहीं हमने तो नहीं देखा, तो उस समय उस गाय के प्राण बच गए, इसलिए आपका झूठ भी सच में शामिल हो गया। और आप किसी को मारने के लिए कोई बात सच कह रहे हैं, वो सच होते हुए भी झूठ में आ जाती है। इसलिए धर्म और धर्मायतन पर कभी भी संकट आए तो उसके लिए अपना बलिदान भी देना पड़े तो देना चाहिए। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन ऐसे संकल्प कराए जाते हैं कि कभी भी धर्म पर धर्मायतन पर कोई कष्ट आया तो हम इनकी हमेशा रक्षा करेंगे। तो भव्यात्माओं, इन श्लोकों को पढ़ करके मैं आपको इसीलिए बताती हूँ कि हमारे आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने केवल संतों के लिए नहीं, गृहस्थों के लिए सब बातें बताई, जिनको पढ़ पढ़ करके माँ मोहिनी ने घर में अहिंसा पालन का नियम ले लिया था। मैं देखती थी कि अष्टमी और चतुर्दशी आती तो साबुन से सर से कपड़े नहीं धुलती, वे अपने शरीर में साबुन नहीं लगाती और कम से कम पानी में स्नान करके उस दिन वो अहिंसा व्रत का विशेष पालन करती थी। ये है स्वाध्याय का सार। आपको भी सोचना है कि हम अष्टमी चतुर्दशी के दिन या तीर्थ पर जाएंगे या मंदिर में जाएंगे, कभी लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, नेल पॉलिश यूज नहीं करेंगे, चमड़े की वस्तुओं को यूज नहीं करेंगे। ये है अहिंसा व्रत का, क्रम क्रम से करके छोटे रूप में भी पालन करते हैं तो एक दिन वह नियम बड़ा होकर के हमें मोक्ष मार्ग में अग्रसर कर देता है। जो लो द्वाद सांग वही जिनवाणी माता की जावाणी।